choir just sang,
Choir in Abigail, this is my beloved son. हम टैबरनेकल क्वायर को सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो उसने इस सुबह हमें प्रदान किया और जिन लोगों ने हमसे आज इस सेशन में बात करी है. हमारे बाद में मेरे बाद में इस सेशन को अंत किया जाएगा और क्वायर गाएगा. वी थैंक दी ओ गॉड योर फॉर प्रॉफिट. प्रार्थना फिर एल्डर डोनाल्ड एल हेलस्ट्रॉम जो 70 के हैं उनके द्वारा प्रार्थना की जाएगी. इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी सेशन इस दोपहर 2 बजे शुरू होगा. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार को जताता हूँ. मैं नम्र हूँ तुमसे बात करने की जिम्मेदारी के लिए, पर मैं आभारी भी हूँ इसके लिए. जब हम पिछली बार मिले थे जनरल काउंसिल में 6 महीने पहले, तब उसके बाद से दुनिया में ऐसे कई चिन्ह हैं कि हमारा दुनिया बदल रही है. ग्लोबल इकॉनमी पिछले 6 महीने में लग रहती थी धीरे धीरे हो रही थी, अब वो बिल्कुल टूट गई है और पैसे की फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं. और इस समाज की जो आत्मिक स्थिति है वो भी ख़राब होती जा रही है. लड़ाइयाँ और खुद के लोग के कई तरह से दुख जीवन में आ रहे हैं. ये आसान होगा कि हम भरोसा छोड़ दें और आने वाले समय के बारे में समझें कि वो अच्छा नहीं होगा और हमें उससे डर भी लगे. अगर पर वो तभी होगा जो हम इस जीवन में जो गलत है उस पर ध्यान दें. पर आज हमें अपने ख्यालों को उन दुख वाले मुसीबतों से अलग करके हमें इस गिरजे के सदस्य होने से जो आशीर्वाद हमें मिलते हैं उन पर डालना है. जैसे अपोस्टल पॉल ने किया है, गॉड हैथ नॉट गिवन द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ अ साउंड माइंड. हम में से कोई भी इस जीवन को बिना मुसीबतों से नहीं जी सकते हैं. कभी कभार इसमें कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं. कई बार उसके लिए हम यहाँ हैं ताकि हम सीख सकें ऐसी चीज़ें अब जो हमारे जीवनों में होती हैं. हम जानते हैं कि जैसे हम इन चीज़ों से गुजरेंगे हमें दुख मिलेगा. पर हमें कहा जाता है, एडम फेल दैट मैन माइट बी and men are that they might have joy. How might we have joy? हम अपने जीवन में खुशी कैसे पाएं जब हमारे सामने ऐसी चीजें हो रही हैं? फिर स्क्रिप्चर कहते हैं, Wherefore be of good cheer and do not fear, for I, the Lord, am with you and will stand by you. गिरजे का जो इतिहास है उसमें कई अनुभव तुम्हें मिसालें मिलेंगी उन लोगों की जिन्होंने कई मुसीबत पाई हैं, पर उन्होंने निश्चित रूप से अच्छे मिजाज से यीशु मसीह के गॉस्पल के चेले बन अपने जीवन को उस पर निर्भर किया और उसमें सफलता पाई. उनकी इच्छा थी कि चाहे कुछ भी आए ये नींव इस नींव के जैसे हमें सफलता मिलेगी. वो हमारी मुसीबतों को हमसे हटाएगा नहीं, पर हमारी मुसीबतों को हमें सामना करने देगा और उन पर सफलता पाने देगा. कई लोग हैं पर उन जिन्होंने अपने उदाहरण दिए हैं और मुसीबतों का सामना करे गॉस्पल और मसीह में विश्वास कर वो शक्ति पाए जिन्हें वो चाहते थे. इस सुबह मैं तुम्हें ऐसे तीन उदाहरणों के बारे में बताना चाहूँगा. पहला मेरे खुद के परिवार में से आता है, जब उनमें एक भावुक अनुभव हुआ जिससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है. मेरे मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स गिब्सन और सिसिलिया शार्प कॉन्डी क्लकमन स्कॉटलैंड के थे. वो कोल माइनर्स थे. वो दुनिया के साथ में शांति थे. उनके साथ में आसपास काफ़ी परिवार था और अच्छे घर में भी रहते थे. फिर चर्च जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के मिशनरियों द्वारा संदेश को पाया जो उनकी आत्माओं की गहराइयों में पहुंच गया और फिर वो धर्म परिवर्तन करे उन्होंने जायन में जाने के बुलावे को सुनकर ये जाना कि उन्होंने क्या करना था 1848 में उन्होंने अपने सारी चीजों को बेचकर अटलांटिक ओशन को पार किया उनके साथ में 5 छोटे बच्चे थे जो एक छोटी सी नाव में चढ़े और एक छोटे से बक्से में अपनी सारी चीजों को रख के ले गए वो 3,000 मीलों चले 8 हफ्ते वो समुद्र के ऊपर थे जहाँ उनके पास में बहुत कम खाना था बहुत कम पानी था ऐसी समस्या भरी स्थिति में जो छोटा नथेनियल बच्चा था वो काफी बीमार हो गया कोई डॉक्टर नहीं थे और कोई दवाई खरीदने की जगह नहीं थी जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए उन्होंने सिर्फ प्रार्थना करी और इंतजार किया ताकि वो ठीक हो जाए पर उसकी जो स्थिति थी वो खराब होती गई और वो अंत में उसकी मृत्यु हुई तब उनके दिलों में बहुत दुख हुआ पर उसको उनके बेटे को उनको समुद्र में दहन करना पड़ा क्योंकि वैसे समुद्र में होता और जैसे वो आगे चले माँ बाप जानते थे कि उनको दिल में बहुत दर्द हुआ वो जानते थे कि एक विश्वास जो सत्य से आता है भगवान के प्यार के लिए उनसे मदद मिलेगी उनसे भगवान के शब्दों से उन्हें सहायता मिली इन द वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिबुलेशन बट बी ऑफ गुड चीयर एंड आई शैल ओवरकम द वर्ल्ड मैं अपने पूर्वजों के लिए कितना आभारी हूँ जिनके पास विश्वास था जिन्होंने अपने घर को छोड़कर जायन की ओर आए और इतने मेहनत करी और मुसीबत को झेला मैं अपने स्वर्गीय पिता को विश्वास और साहस की मिसाल के लिए जो गिब्सन एसोसिएशन शार्प कॉन्डी से मुझे मिलती है अब मैं एक विश्वासी आदमी के बारे में बताता हूँ जिसने यीशु मसीह के गॉस्पल की शांति को अपने जीवन में उतारा और बताया कि उससे एक आदमी के जीवन में कितनी परिवर्तन आ सकता है एक शाम पैसिफिक आइल में एक छोटी सी जो नाव थी वो समुद्र के किनारे आई दो पॉलिनेशियन वुमेन ने मैली मालोपुला को बोट से उतारा और उन्हें रास्ता दिखाया जो गांव की ओर जाती थी उन औरतों ने उस सितारे को देखा जो आकाश में थे और चांद की रोशनी ने उन्हें रास्ता दिखाया पर मैली मालोपुला इन चीजों को देख नहीं सकते थे क्योंकि वो अंधे थे मेरी मुलापुर विजन था एक हुआ जब पाइनएप्पल प्लांटेशन में काम करते करते उनकी आंखों की रोशनी चली गई उसके बाद वो बहुत दुखी थे जब तक उन्होंने यीशु मसीह के गॉस्पल की अच्छी खबर के बारे में नहीं सुना उनकी जीवन को यीशु गिरजे की सिखों के अनुसार लाया गया और फिर उनके जीवन में वापस आशा और खुशी आई ब्रदर मुलापुला उनके प्यारे नो एक लंबी यात्रा करी क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते थे जिनके पास भगवान का प्रीस्ट था वो एक आशीर्वाद चाहते थे और वो ये मेरा आभार था कि मैंने उन्हें वो आशीर्वाद दे दिया
जैसे हम खत्म करें अब आशीर्वाद देना, उन्होंने मैंने उन आंसुओं को देखा जो उनकी आंखों में से टपक रहे थे। वो अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना करे, भगवान मैं जानते हो, तुम जानते हो मैं अंधा हूँ, तुमने तुम्हारे सेवकों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आंखें वापस देख सकेंगे, मेरे ज्ञान में चाहे मैं रोशनी देखूं या अंधकार, मैं अनंतता से गॉस्पल के सत्य के लिए आभारी रहूंगा जिसकी वजह जिसे मैं अब देख सकता हूं और जो मेरे जीवन में रोशनी प्रदान करेगी। वो अपने कदमों पर खड़े हुए और हंसते हुए उन्होंने हमें आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, फिर वो चले गए। जैसे वो चुपचाप आए थे वो चुपचाप अब चले गए, पर उनकी उपस्थिति को मैं कभी भी भूल नहीं पाया। मैंने जो यीशु के संदेश है उसके ऊपर ध्यान दिया, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबके पास में इस जीवन में रोशनी है। हमें अकेले नहीं चलना है, चाहे हमारा रास्ता कितना अंधकार भरा हुए। एम लुईस हैस्किन के शब्द मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने लिखा है, मैंने उस आदमी से किया जो दरवाजे पर खड़ा था, मुझे रोशनी दो ताकि मैं अनजान रास्ते को जा सकूं। और उसने कहा, अंधकार में जाओ और अपने हाथ को भगवान के हाथ में रखो, वो तुम्हें एक रोशनी से ज्यादा मदद करेगी। मेरा आखिरी उदाहरण वर्ल्ड वॉर II के बाद ईस्ट प्रशिया की कहानी में से आता है।
In about March 1946,
एक साल जो वर्ल्ड वॉर II के बाद का समय था, एज़रा चाइल्ड बेंसन जब कोरम द 12 के एक सदस्य थे और उनके साथ में फ्रेडरिक डब्ल्यू बैबल थे, यूरोप के बाद में पोस्ट वॉर टूर पे थे। वो संतों से मिलने जाते थे ताकि वो जान सके कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उन्हें किस प्रकार मदद की जाए। एल्डर बेंसन और बैबल ने बाद में कहता है एक बयान से जो एक गिरजे के सदस्य ने दी, उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं थे। वो उनके पति इस प्रश्न के अच्छी जीवन में जीते थे, पर एक वर्ल्ड वॉर आई, फिर उनका पति मर गया उस लड़ाई के अंदर और वो अकेली थी अब चार बच्चों की देखभाल करने के लिए।
The occupying forces determined that the Germans in East Prussia must go to West Germany.
जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि जो जर्मन थे ईस्ट प्रशिया में अब वेस्ट जर्मनी उन्हें जाना है ताकि उन्हें नया घर मिले। वो और जर्मन थी इसलिए उसे जाना जरूरी था। वो 1,000 मीलों की यात्रा थी और उसके पास कोई और चारा नहीं था पर पैदल चलना था। उसे जो भी उसे जरूरी चीजें थी उसे एक लकड़ी के वैगन में ले जाना था। लकड़ी की गाड़ी में उसने अपने चीजें रखी और बच्चों के साथ में वो चल पड़ी और उसके दिल में भगवान के लिए विश्वास और लाइट टुडे प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ में विश्वास के साथ उसने कदम बढ़ाया। उसने और उसके बच्चों ने इस यात्रा को समर में चालू किया। किसी उनके पास न खाना था न पैसा था, इसलिए वो खेतों में से जो भी मिल जाए उसे उठा लेती थी बच्चों के लिए और खुद के लिए। उसे हमेशा डर लगा रहता था रेफ्यूजी से और सैनिकों से। जैसे दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने, जो तापमान था वो धीरे धीरे नीचे जाता गया और ठंड बढ़ती गई, और जो ज़मीन थी वो बिल्कुल पक्की हो गई। और उसकी फिर उन्होंने तीन बच्चे उनके बिहान थे और पीछे थे, और एक बेबी उनके पास में थी। उनके कदमों के पास में कपड़ा था छोटा सा, जो उनके उनको गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, और उनके जूते काफ़ी घिस गए थे, और उनकी पतली जैकेटें उनके ऊपर उन कपड़ों को उनको ढक रही थी और उनको सर्दी से बचा रही थी। पर उसके बाद में अब बारिश हुई, और बारिश के बाद में स्नो गिरी। फिर उन्होंने एक बार्न को ढूंढने की कोशिश करी ताकि वो वहाँ पे थोड़ी गर्मी पा सके। वो हमेशा ये सोचती रही कि वो अपनी मंजिल से पहुँचने के पहले मर जाएगी। फिर एक सुबह वो हुआ, जैसे उस वो उठी तो उसके दिल में कुछ उसने महसूस किया। उसकी 3 साल की बेटी मृत्यु को पा चुकी थी। वो जानती थी कि अब कोई चारा नहीं है, पर उन्हें आगे चलते जाना है। इसलिए उनके पास में सिर्फ एक चीज थी, एक चम्मच। सो उस चम्मच से उसने जमीन खोदा ताकि उसके अंदर वो अपनी बच्ची, 3 साल की बच्ची की कब्र बना सकें। मृत्यु उसके साथ में वापस आई उस यात्रा में। अब उसका 7 साल का बेटा मर गया, भूख की वजह से या ठंड की वजह से या दोनों की वजह से। अब उसके पास में सिर्फ वो चम्मच सी। फिर उसने चम्मच घंटों से लेकर जमीन को खोद के उसने वापस उस बेटे को कब्र में डाला। उसके बाद में 5 साल का बेटा उनका मर गया। फिर उसने वापस चम्मच से उसे भी दफना दिया। जैसे वो अंत में अपनी मंजिल के अंत में पहुंचे, जो बेबी उनके हाथों में थी वो भी मर गई। अब वो चम्मच भी नहीं थी। तो उसने जमीन को अपने हाथों से खोदा ताकि वो उस 3 साल की बच्चे के लिए जो बेबी थी उसको उसके लिए दफना दें। वो सोच रही थी कि उसका पति चल बसा था और सारे बच्चों से उसने अपने जीवन की सारी चीजों को दे दिया था, अपने घर को। इस समय उसके दिल में काफी दुख हुआ और उसे लगा कि उसका दिल लगभग ऐसा कि टूट जाएगा। उसने सोचा कि वो कैसे अपने जीवन को खत्म करे, जैसे उसके कई साथी देश वाले कर रहे थे। वो कितना आसान होगा कि वो ब्रिज के ऊपर से कूद जाए या आने वाली ट्रेन आती हुई ट्रेन के सामने कूद जाए। जैसे ये ख्याल उसके दिमाग में गुजरे, उसके दिल में से एक आवाज आई, अपने घुटने पर जाकर प्रार्थना करो। उसने उसको उस पर ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद वो उसको चाहते हुए भी उसको सुनना पड़ा। वो घुटने पर गई और उसने फिर प्रार्थना करी अपने जीवन में से सबसे ज्यादा जोर से। उसने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे पास कुछ क्या पता नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी आत्मा लगभग टूट गई है, पर मेरे आत्मा में आपके बेटे यीशु मसीह के बलिदान के लिए आभार है।
میں ان کے ان کے لیے اپنے پیار کو بتا نہیں سکتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے مرے ہیں تاکہ میں اپنے پریوار کے ساتھ جی سکوں, اور انہیں مرتیو کی سلاخوں کو توڑا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو واپس دیکھ سکوں اور انہیں بڑا کر سکوں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس سمے میں جیوں, پر میں رہوں گی تاکہ میری اچھا ہے کہ ہم واپس ایک پریوار کے طرح اکٹھا ہو جائیں اور آپ کے پاس لوٹیں سورگ میں. جیسے وہ اپنی منزل کارلسروہ جرمنی لوٹی تو وہ بہت پتلی ہو چکی تھیں. برادر بائبل نے کہا کہ ان کا آنکھیں, چہرہ, ان کی ہڈیاں دکھ رہی تھی. وہ بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ بھوک سے مر رہی ہوں. ایک گرجے کی میٹنگ میں بعد میں انہوں نے اپنے بیان کو دیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی خوش تھے کیونکہ بھگوان جیتے ہیں اور یسوع مسیح ہیں, اور وہ مرے تاکہ ہم جیون پا سکیں. انہوں نے بیان دیا کہ اگر وہ وشواس سے یہ کام کرتے رہے اور انت تک کام کرے تو وہ ان کے ساتھ میں جڑیں گے جو جا چکے تھے, اور پھر انہیں بھگوان کے راجے میں بچایا جائے گا. ہولی اسکرپچر سے ہم پڑھتے ہیں, Behold us righteous, the saints of the Holy One of Israel, they who have believed in Him, they who have endured the crosses of the world, they shall inherit the kingdom of God, and their joy shall be full forever.
I testify to you,
میں بیان دیتا ہوں کہ تمہارے وعدے کیے گئے آشیرواد کا کوئی مولی نہیں. طوفان آئیں گے, بارش ہوگی, پر ہمارا جو گاسپل کا گیان ہے اور سورگی پتا کا اور ہمارے مسیح کا, وہ ہمیں بھروسہ دلائے گا اور ہمیں مضبوطی دے گا اور ہمارے دلوں میں خوشی دے گا تاکہ ہم اپنے قدموں سے قدموں بلا کر وعدوں کو نبھا کر چل سکیں. اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں ہرا سکے گا. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, ڈرو مت, اچھے مزاج کے ہوں. آنے والا سمے اتنا ہی اچھا ہے اور مضبوط جتنا تمہارا وشواس ہے. میں بیان دیتا ہوں کہ بھگوان جیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں ہماری پرارتھناؤں کو. ان کے بیٹے یسوع مسیح ہمارے مسیح ہیں اور بچانے والے. سورگ کے آشیرواد ہمارا انتظار کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.